थैंक यू वेरी मच आप सब भक्तों को। शायद हमने 2 साल बाद देखा फिर से। लास्ट ईयर में आए जन्माष्टमी के टाइम में आया था। आवाज़ आ रही है पीछे? इज दैट क्लियर? आवाज़ क्लियर होगी? एकदम सही ढंग से सुन रहे तो पर, हाँ वॉल्यूम चाहिए और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हो गया मैक्सिमम हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये ठीक है ज्यादा अच्छा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
स्वयं रूपा कदामया ददाति स्वापदान्तिकां वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं सगरजतं सहगणरघुनाथान्वितं तं सदैवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पाद सहगणवृत शिवशान्वित हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वपारमस्तुते देवी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासव भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग साथियों ने अपना मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ कर दीजिए साइलेंस मोड पर प्लीज। सो आज से हम आने वाले 5 दिन तक एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है चरितामृत उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान का स्वरूप है। सो चैतन्य महाप्रभु के विषय में आने वाले 5 दिन किस प्रकार के होंगे उसका हम अंदाजा आपको बता देते हैं पहले से।
अभी जो फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा आनी थी, वह पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। आप में से कई भक्त चैतन्य महाप्रभु से परिचित हैं, कई भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में उन्होंने जो जो लीलाएं प्रस्तुत की थी, वो सारी लीलाओं के विषय में हम पूर्ण रूप से अवगत नहीं है। तो ये एक प्रयास है भक्तों के द्वारा, विशेष करके आप गांधीनगर के भक्तों के द्वारा, कि हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन मनाने से पहले हम चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का श्रवण करके एक अनुकूल मनोस्थिति बना सकते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव अधिक अच्छी तरह से मना सकें। चैतन्य महाप्रभु के विषय में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे गुजरात में आपके नरसिंह मेहता है, महाराष्ट्र में तुकाराम थे, फिर राजस्थान में मीराबाई है, इस तरह से वेस्ट बंगाल में चैतन्य थे, आपके स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में भी ये चीज़ आती है कि चैतन्य करके एक महान भक्त प्रकट हुए थे बंगाल में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। भगवान को त्रियुगी कहा गया है, जो तीन युग में प्रकट होते हैं, सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में। लेकिन कलयुग में जो भगवान प्रकट होंगे उसके विषय में शास्त्र यह बात खुले ढंग से नहीं बताता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार को प्रच्छन्न अवतार माना जाता है, छिपा हुआ अवतार। वैदिक शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में, अनेक पुराणों में, महाभारत में, अनेक स्थानों पर इस विषय की चर्चा हुई है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का अर्थ होता है कि जितने भी अवतार है, राम, नरसिंह, वराह, वामन इत्यादि, ये सारे अवतार का जो मूल है वो है चैतन्य महाप्रभु, वो है कृष्ण। महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवतम का सबसे प्रसिद्ध श्लोक चैतन्य महाप्रभु के विषय में है, कृष्ण वर्णन तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस। इसमें कहा गया है कृष्ण वर्ण कलयुग में भगवान कृष्ण वर्ण, जिनके जीवा पर हमेशा कृष्ण नाम होगा, कृष्ण जो हमेशा कृष्ण का उच्चारण करें, और त्विषा अकृष्ण, और जिनका जो स्वरूप होगा वो अकृष्ण अर्थात गौर होगा, त्विषा अकृष्ण, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण सांगो पांगास्त पार्षद। और इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो प्रकट होंगे तो वो कोई शस्त्र सुदर्शन चक्र इत्यादि कोई शस्त्र स्वीकार नहीं करेंगे, शस्त्र धारण नहीं करेंगे। उनका अस्त्र शस्त्र होगा मृदंग, खड़ताल, उनके पार्षद। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अगर भगवान कलयुग के लोगों को शस्त्र से दंड देना शुरू करे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए भगवान हमारे भीतर में जो अज्ञानता छिपी हुई है, हमारे भीतर में जो पापमय वृत्तियाँ हैं, उस वृत्तियों को नष्ट करने के लिए बिना शस्त्र से ये प्रकट होते हैं। किस उद्देश्य के साथ? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए। और कलयुग में बुद्धिशाली लोग भगवान कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन यज्ञ से पूजा करेंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, सुमेधसा का अर्थ होता है बुद्धिशाली लोग। कलयुग में बुद्धिशाली लोग का मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर अल्प बुद्धि होते हैं। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन यज्ञ से पूजा करता है। महाभारत में प्रसिद्ध श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हिमालो वरांश चंदनागरि संन्यास क्षम शांता निष्ठा शांति परायण। कृष्ण चैतन्य सुवर्ण वर्ण हिमालो, उनका वर्ण होगा सुवर्ण, सुवर्ण वर्ण हेमांग, हेमांग का अर्थ होता है सोने जैसा शरीर, सोने जैसे वर्ण का शरीर। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांश चंदनागरि, उनके शरीर पर चंदन का पूरा लेप किया होगा वरांश चंदनागरि। संन्यास कृत क्षमा, वह संन्यास स्वीकार करेंगे। संन्यास कृत क्षम शांता निष्ठा शांति परायण। तो इस तरह से अनेक अनेक शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के आगमन की भविष्यवाणी हुई है। हम किसी ऐसे अवतार को स्वीकार नहीं करते जिसका वैदिक शास्त्र में कोई प्रमाण ना हो। हम ऐसे किसी भगवान को नहीं मानते जो भगवान का वर्णन या भविष्यवाणी शास्त्र में या श्रीमद् भागवतम में ना हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ये सभी शास्त्रों का निर्णय है। अभी आने वाले 5 दिनों में हम आपको उनकी मधुर लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। उनकी जो मधुर लीलाएं हैं, वो लीलाओं का श्रवण मात्र करने से, केवल सुनने मात्र से हमारे हृदय का जो मैल है वो स्वच्छ हो जाता है, कृष्ण प्रेम उजागर होता है केवल सुनने मात्र से। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल निलोता, उनका हृदय निर्मल हो जाता है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक चैतन्य महाप्रभु का जो गुणगान है कुछ दिनों में हम करेंगे। किंतु चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक जो डिटेल में जो गुणगान है वो बहुत मुश्किल है कुछ घंटों में बताना। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, 3 प्रसिद्ध ग्रंथ। एक है चैतन्य भागवत, जिसका रचना किया था वृंदावन दास ठाकुर ने। दूसरा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, जिसकी रचना की थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। और तीसरा ग्रंथ है चैतन्य मंगल, जिसकी रचना की थी लोचनदास ठाकुर ने। तो ये तीन प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन के विषय में और उनके लीलाओं के विषय में, उनके उपदेश के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। विशेष करके चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्री प्रभुपाद जी ने उस पर तात्पर्य अपने लिखे हैं। और कई बार हम देखते हैं कि भक्त चैतन्य चरितामृत को कभी शायद पढ़ने के लिए इतना समय नहीं किए हैं अभी तक, या कभी पढ़े नहीं हैं या पढ़ रहे हैं, किंतु चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका श्रवण मात्र करने से आपका हृदय सब प्रकार के कष्टों से तत्काल मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के कष्टों से। ये हम अनुभव कर चुके हैं, उस बात को हम बता रहे हैं। तत्काल नष्ट हो जाते हैं सारी चिंता है, सारा कष्ट तत्काल नष्ट होता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा चैतन्य चरितामृत अपने पास में रखते थे, जहाँ पर भी जाते थे। यहाँ तक कि जब प्रभुपाद यहाँ से विदेश गए थे एक महीने के समंदर की यात्रा पर जलदूत के जहाज में, तो उस एक महीने में भी उनका जब अटैक, हार्ट अटैक जब उनको आए थे, तभी भी उन्होंने चैतन्य चरितामृत को ही खोल करके पढ़े थे। जब कभी उनको कोई कठिनाई होती थी तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत खोल कर पढ़ते थे। तो चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और चैतन्य महाप्रभु के संदेश, उनका उपदेश, ये दोनों ही हमें प्राप्त होता है। तो हम चैतन्य चरितामृत और अन्य जो ग्रंथ है उसमें से मिला करके आपके सामने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर 48 साल रहे, 48 years, और उन्होंने पहले 24 साल का समय व्यतीत किया नवद्वीप मायापुर में, और बाकी के जो 24 साल में से 6 साल उन्होंने व्यतीत किए अलग अलग तीर्थों की यात्रा पर, और अंतिम 18 साल जो है वो उन्होंने व्यतीत किए जगन्नाथपुरी धाम में। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में यह आदेश दिया है सबको, सर्वधर्मान परित्यज्य वामेकं शरणं व्रज, सब प्रकार के धर्मों का, सब प्रकार के मनोविचारों का त्याग करके केवल मेरे शरण में आओ, ऐसा चैतन्य कृष्ण ने आदेश दिया है। मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन जब भगवान ने देखा कि कलयुग के लोग इतने कम बुद्धि है, इतने दुर्भागी है कि जब तक उनको कोई सिखाएगा नहीं कि भगवान के शरणागत कैसे होते हैं, या उन लोग का उद्धार करना ऐसे संभव नहीं होगा, तो स्वयं उन्होंने चैतन्य के रूप में प्रकट होने का निर्णय किया। स्वयं भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आपनी आचरित भक्ति सिखाए हूँ सबार, मैं स्वयं भक्ति का पालन करके दिखाऊंगा कि भक्ति का आचरण कैसे किया जाता है। जब कभी टीचर होते हैं वो स्टूडेंट का हाथ पकड़ करके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे लिखवाते हैं, तो क्या टीचर को नहीं आता? टीचर को आता है, धीरे धीरे लिखवाते हैं, टीचर को तो आता है, लेकिन उस बच्चे को सिखाने के लिए स्वयं करते हैं दिखावे। इस तरह से कलयुग के लोगों को स्वयं भगवान सिखाते हैं किस तरह से भक्ति का आचरण कर सकते हैं, स्वयं भगवान से मिलते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्णा एक बार प्रकट होते हैं, एक बार। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो होता है भगवद्गीता के अनुसार सहस्त्र युग पर्यंतम। इसका अर्थ है ये 43 लाख साल जो है 4 मिलियन 300,000 इतने जो साल होते हैं उतना एक चतुर्युग होता है, उसको मल्टीप्लाई करो 1000 बार तो वो हुआ ब्रह्मा जी का 12 घंटा और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि। तो ये करोड़ों साल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, करोड़ों साल, और पूरे दिन में केवल एक बार कृष्ण प्रकट होता है, वो भी द्वापर युग में। और उस द्वापर के फॉलोइंग जो कलयुग आता है, उसके बाद का जो कलयुग आता है, उस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। आप सोचिए आप सब कितने सौभाग्यशाली हो कि आप सबको वो कलयुग मिला कि जिस कलयुग में स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, और वो भी अधिक समय नहीं हुआ, केवल 500 साल के आसपास, करीबन 500 साल भी हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के। तो अभी तो आए थे, बस कल ही तो आए थे, अभी कल ही तो प्रकट हुए थे, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यही भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत का जो पहला श्लोक है वो पहले दो श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। वंदे गुरुं इषभक्तान् इषं ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तच्छक्तिं कृष्ण चैतन्य संयकम्। मैं सबसे पहले मेरे आध्यात्मिक गुरुओं के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ, फिर भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों में, भगवान के अवतारों के चरणों में, उनके अंश, उनकी शक्तियाँ और स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य, उनके चरणों में मैं प्रणाम अर्पण करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदये पुष्पवंतो चित्रो सन्नौ तमोनुदौ। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद उनके चरणों में विशेष प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्र की भांति उदय हुए हैं। गौर देश में ये दोनों एक साथ उदय हुए हैं, सूर्य और चंद्र। उद्देश्य है उनका सब प्रकार के अंधकार को नष्ट करना और सभी जीवों पर सबसे उत्तम आशीर्वाद प्रदान करना, ये उनके प्राकट्य करना है। तो भगवान क्यों प्रकट हुए थे इसके विषय में कृष्णदास कविराज कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है उसमें से मुख्य जो कारण है उनके प्रकट होने के, उसमें से एक कारण यह है कि अनर्पित चरिम जिला करुण्या अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्तिश्रिय। हरिपुरट सुंदर चिति कदम्ब संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। अनर्पित चरिम चिरा, अनेक अनेक काल से जिसका दान नहीं हुआ था, अनर्पित अर्पित नहीं हुआ, अनर्पित जो अनर्पित नहीं हुआ, चरिम चिरा अनेक अनेक समय से चरिम चिरा उसका दान करने के लिए करुण्या अवतीर्ण कलव कलयुग में अवतीर्ण हुए भगवान, करो समर्पित मोर क्या दिया उन्होंने, उन्नत उज्ज्वल रस, सबसे उत्तम कोटि का जो सुख है वो उन्होंने दिया, और वो है क्या, स्वभक्ति श्रेय, उनकी अपनी निजी भक्ति का दान करने के लिए। कलयुग के लोगों का दुर्भाग्य देख करके चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इतनी करुणा प्रकट हुई कि उन्होंने स्वयं इस कलयुग में वो चीज देने के लिए प्रकट हो गए कि जो ऐसा प्रेम कि जो ब्रह्मा जी को भी कभी प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा, शिव, नारद, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सारे जो प्रधान देवताएं हैं उन लोगों को भी ये प्रेम प्राप्त नहीं होता। ऐसा प्रेम ब्रह्मा के लिए जो दुर्लभ, ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सदा कार्य जा सकते, जो ब्रह्मा को दुर्लभ है ऐसा प्रेम देने के लिए किसको दे रहे हैं, कलयुग के लोगों को देने के लिए, मुझे देने के लिए, आपको देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट, पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धार लो, मैं स्वयं मेरा नाम हरि नाम मैं स्वयं प्रदान करूंगा, इस कलयुग का जो युग धर्म है उसको मैं स्वयं प्रकाशित करूंगा। कृतेय ध्यायतो विष्णु, सचिव का जो युग धर्म है वो है ध्यायतो, भगवान का ध्यान करना। त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता युग में महान यज्ञों के द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती है। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में हमें भगवान के अंतर्विग्रहों की उपासना करके उत्तम गति प्राप्त होती है। कलो तत् हरि कीर्तना, वही गति कलयुग में हरि कीर्तन, हरि नाम के कीर्तन के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए जो व्यक्ति हरि नाम जो युग धर्म है उसको स्वीकार करता है उसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु सहाय करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा था प्रकट होने से पहले कि कलयुग सोच रहा है कि वो सारे जीवों को भ्रष्ट कर देगा और भगवान के जो संदेश है, नाम है, धर्म है, उसका नष्ट करेगा, उसको नाश करेगा, लेकिन मैं स्वयं भगवान सृष्टि का आदि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, मैं ये देखता हूँ मेरे होते हुए कलयुग के लोगों का बाल भी कौन बाका कर सकता है, मैं स्वयं जाऊंगा और सबको हरिनाम फ्री में बांटूंगा, सबको कृष्ण प्रेम फ्री में बांटूंगा, और जब तक मैं किसी का रक्षा करूंगा तब तक ऐसे हजारों कलयुग आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते जीवों का। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये घोषणा करके प्रकट हुए, इतना आसान मार्ग बनाया, क्या करेंगे आप, हरिनाम के अलावा छोड़ करके यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, किस प्रकार से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, इस प्रकार के कार्य कलयुग के लिए नहीं है। ना आप यज्ञ कर सकते हो, ना दान कर सकते हो, ना तप कर सकते हो, कलयुग में इस प्रकार के उपाय काम नहीं करते। इसलिए कलयुग का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो है हरि कीर्तन, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण, कीर्तन करना। चैतन्य महाप्रभु की ये दो मुख्य बाह्य कारण के साथ साथ कुछ आंतरिक कारण भगवान के ये हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं ये अनुभव करना चाहते थे कि उनका अपना माधुरी कैसा है, स्वयं का माधुरी। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के विग्रह या मूर्ति को देखता है तो सुंदर लगता है, लेकिन आपको सुंदर लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो वो माधुर्य क्या है, उनका सौंदर्य क्या है, उसका ज्ञान वो स्वयं कैसे अनुभव कर पाते हैं। तो ये कारण एक है कि दूसरा कारण है भगवान के जो प्रसिद्ध वृंदावन के जो भक्त हैं वो भक्त भगवान को प्रेम अर्पण करने में किस प्रकार का आनंद अनुभव कर रहे हैं वो तो जब तक वो भक्त बनेंगे नहीं तब तक कैसे समझ पाएगा। जब तक स्वयं भगवान भक्त का रूप लेकर अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये कैसे समझ सकते हैं कि भगवान की सेवा में उनके प्रेम में उनकी भक्ति में क्या रस है क्या आनंद है वो तो कैसे समझ सकते हैं। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसको स्वयं अनुभव करना पड़ता है। मैं आपको कितना भी वखान करूँ कि गुलाब जामुन का आकार ऐसा होता है गोल होता है उसमें मीठापन होता है और वो घी से बनाते हैं ऐसा स्वाद होता है वैसे, लेकिन कितना भी वर्णन करने पर क्या आप ये अनुभव कर पाएंगे कि उसका स्वाद कैसा है। उसका स्वाद आप तभी अनुभव कर पाएंगे ना जब आप स्वयं उसको चखेंगे, है ना। तो इस तरह से जब तक भक्ति का स्वयं आस्वादन नहीं करेंगे तब तक ये संभव है। तो ऐसे अनेक आंतरिक कारण है जो इतने महाप्रभु के प्रकट होने के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है हम भक्तों के लिए विशेष करके कि हम सब जो कम बुद्धि वाले या दुर्भागी या ऐसे कलयुग जो इतना तप्त है इतना कष्ट देने वाला युग है, ऐसे युग में जहाँ पर सब जगह भ्रष्टाचार सब जगह पाप सब जगह दुर्व्यवहार क्रोध काम ये सब का प्रभाव सबसे अधिक मात्रा में आपको पाया जाता है, जिससे जिस युग में रह करके अपने आप आपका हृदय जलता है, आपका हृदय जो है वो कष्ट से पीड़ित है, ऐसे युग में भगवत प्राप्ति का जो सबसे आसान तरीका जो हमें बताया वो है चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का माध्यम सिखाया। इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये हम हरे कृष्ण मंत्र का शरण लेकर के उस परम पद को परम भगवान की लीला को विशेष करके उनके प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये वैसा प्रेम है जो भगवान हमें देना चाहते हैं, जिस प्रेम के लिए हम अनेक अनेक जन्मों से तड़प रहे हैं, और जो प्रेम हमें ना तो हमारे मित्रों से मिलता है ना फैमिली से मिलता है ना समाज में मिलता है ना देश में मिलता है, कहीं पर भी ये प्रेम हमें प्राप्त नहीं होता जो प्रेम भगवान के चरणों में प्राप्त होता है। और ऐसे चरणों में प्राप्त होने वाला प्रेम इतना सरल नहीं है। अनेक अनेक योगी अनेक अनेक साल तक ध्यान करने पर भी ये प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। अनेक अनेक योग ये कर्मी बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद भी इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी लोग भी इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, और ऐसा प्रेम चैतन्य महाप्रभु ये गांधीनगर के लोगों को भी देने तैयार है। यहाँ पर आकर के चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी यहाँ पर प्रकट हो चुके हैं, पधार चुके हैं, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आपको प्रेम बांट रहे हैं, दान दे रहे हैं प्रेम का। अभी हमें ग्रहण करना है इस प्रेम को, उनके बताए गए मार्ग पर चलकर उनके बताए गए आदेशों का पालन करके। अगर हम विनम्रता से इस शिक्षाओं का पालन करते हैं, हमारे अपने अहंकार को साइड में रख करके, तो क्या परिणाम आएगा? हमारे जीवन में वो खुशी प्राप्त होगी, वो सुख प्राप्त होगा जो हम जन्म जन्म से ढूंढ रहे थे। ये इसका गारंटी है, प्रमाण है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जिसमें से उन्होंने कुछ लीला जो उन्होंने बाल्यकाल में की थी उस लीलाओं को ग्रंथकार में आदि लीला के नाम से लिखा गया है। जब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया तथा 24 साल तक की जो लीलाएँ हैं उनकी बाल्य लीलाएँ और युवा किशोरावस्था की लीलाएँ पौगंडावस्था की लीलाएँ ये सब जो लीलाएँ हैं उनको आदि खंड में बताया गया है। संन्यास के बाद की कुछ लीलाएँ हैं जिसमें उन्होंने परिभ्रमण किए थे साउथ इंडिया दक्षिण भारत इत्यादि, तो उस लीलाओं का अधिकांश भाग मध्य लीला के नाम से ग्रंथकरण किया गया है और अंत के जो 18 साल जो उन्होंने बिताए जो उनकी भक्ति की चरम सीमा उन्होंने प्रस्तुत की वह अंत्य लीला के रूप में ग्रंथकार ने इसको लिखा गया। जिस तरह से वेद श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों को व्यास देव ने लिखा है उसी तरह से चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत इन ग्रंथों की रचना करने वाले जो आचार्य हैं वो व्यासदेव के अवतार चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास चैतन्य लीला को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो सौभाग्य से हमारे पास ये चैतन्य लीला उपलब्ध है जिसका हम आपके साथ एक के बाद एक चर्चा करना चाहते हैं। तो बाल्यकाल में जो लीलाएँ की थी वो बहुत ही मधुर लीलाएँ भगवान ने प्रकट की थी, बहुत ही सुनने में बड़ी मधुर है ये कथाएँ। जब भगवान ने निश्चय किया कि मैं इस कलयुग में प्रकट होना चाहता हूँ चैतन्य के रूप में गौर के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पार्षदों को शिव जी को ब्रह्मा जी को इन सब पार्षदों को अपने जाने से पहले भेज दिया, आप प्रकट होइए। और उस समय उन्होंने स्थान का चुनाव किया वेस्ट बंगाल, उसको नवद्वीप जो मंडल है वो सनातन धाम है भगवान का, तो उस स्थान का उन्होंने चुनाव किया वहाँ पर वो प्रकट होंगे। और क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले थे उस स्थान के स्थान पर इसलिए भगवान ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया कि नवद्वीप वेस्ट बंगाल वो पूरे विश्व का केंद्र बिंदु बन जाए। उस समय अगर आप इतिहास देखोगे तो 500 साल पहले वेस्ट बंगाल का जो इलाका था वहाँ पर सब बड़े बड़े विद्वान लोग बड़े बड़े धनवान लोग सब प्रकार के सुविधा ये सब कुछ वेस्ट बंगाल में खास करके नवद्वीप के आसपास में, तो अधिक से अधिक लोग वहाँ इकट्ठे थे, बहुत पैसा था लोगों के पास उस समय। लेकिन क्या होता था कि जब भगवान के परम प्रिय पार्षद श्री अद्वैत आचार्य वहाँ पर सबसे पहले निवास करते थे, अद्वैत आचार्य जो है वो है भगवान शिव और नारायण का युगल स्वरूप मिश्र स्वरूप, तो अद्वैत आचार्य अद्वैत जो एक है दो नहीं, तो अद्वैत वहाँ पर प्रकट हुए और उनके सहयोगी थे श्रीवास ठाकुर हरिदास ठाकुर ये उनके सब भक्त गण थे जो उनके साथ रहते थे। प्रतिदिन ये भक्त मिलकर के कृष्ण कथा का चर्चा करते थे बंद कमरे में, सुबह से लेकर शाम तक निरंतर कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते। लेकिन उन सब के हृदय में बहुत बड़ा कष्ट था। क्या कष्ट था कि कलयुग के लोग इतने पापमय जीवन बिता रहे थे, कलयुग के लोग लैविशली खर्चा करते थे शादियों में चंडियों की काली पूजा में दुर्गा पूजा में चंडी पाठ में बड़े बड़े ये अनुष्ठानों में बहुत पैसा खर्चा करते थे और किसी को भगवान के विषय में सुनने के लिए बिल्कुल रुचि नहीं थी, भगवान का संदेश सुनने का किसी को मन नहीं था। ये बात हो रही है 500 साल पहले की। अगर आज के समय में देखा जाए तो आज के लोगों का मनोवृत्ति इससे अधिक बिगड़ा हुआ है ना। लेकिन ये उस समय की बात थी, अद्वैत आचार्य और हरिदास इन सब के हृदय में बड़ी करुणा थी इन जीवों के प्रति कि इन जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये सब बहुत भोगवादी बन चुके हैं, केवल एक ही संस्कार का पालन करते थे, अधिक सारे क्या विवाह संस्कार, उसमें बहुत खर्चा करते थे। आजकल भी आप देखते हो ना कलयुग में विवाह के लिए आप पूरा जैसे कमाता ही है पूरे लाइफ का खर्चा विवाह को देने के लिए, विवाह संस्कार तो बहुत खर्चा करते थे और भोगवादी जीवन जीते थे। और कृष्ण भक्ति को नाम पर उनका कोई रुचि नहीं था। और इस अवस्था को देख करके अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर सबके हृदय में बड़ी करुणा थी। क्या कहते हैं भगवान के भक्तों के विषय में क्या कहा गया है, भक्त जो होते हैं वो पर दुखा दुखी होते हैं, दूसरे के कष्ट को देख करके वो अधिक कष्ट अनुभव करते। आजकल तो लोग कैसे होते हैं, पर दुखा सुखी, किसी का अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो आपको अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, अरे हाँ अच्छा हुआ इसको ऐसा हुआ, और पर सुखे दुखी, अगर कोई आपके सामने अगर कोई सुखी हो गया तो आपके शरीर से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, वो कैसे कैसे सुखी हो गया तो पर सुख दुखी कलयुग के लोग हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वैष्णव है उनके हृदय में बहुत गहरी करुणा है। अद्वैत आचार्य ने घोषणा कर दी, मैं स्वयं भगवान को इस पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए बाध्य कर दूंगा, उनको यहाँ पर प्रकट होना ही पड़ेगा और उनको सब जीवों का उद्धार करना ही पड़ेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अद्वैत आचार्य ने प्रतिज्ञा की, हुंकार किया अद्वैत आचार्य ने, मैं बुलाऊंगा उनको, मैं बुलाऊंगा भगवान को। तो प्रतिदिन अद्वैत आचार्य जाते थे शांतिपुर गंगा के तट पे, उनका घर था उधर, तो प्रतिदिन शालिग्राम का पूजा करते थे और गंगा का जल जो है और तुलसी का मंदिर तुलसी दल ये दोनों का उपयोग करके भगवान का आह्वान करते थे, हे प्रभु प्रकट होइए, हे प्रभु प्रकट होइए, जोर जोर से आह्वान करते थे अद्वैत आचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट होने के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके थे, उन्होंने अद्वैत को पहले भेजा था इसी कारण से कि तुम मेरे जाने से पहले ये व्यवस्था करो। तो अद्वैत आचार्य जो है उन्होंने जो प्रार्थना की थी उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके एक पवित्र ब्राह्मण थे जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी का नाम था सची देवी, उनके घर में भगवान ने प्रकट होने का निर्णय किया। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी वो वही माता पिता है जो पूर्व जन्म में दशरथ और कौशल्या थे, वही माता पिता है जो नंद महाराज और यशोदा थे, वही माता पिता थे जो कर्दम मुनि और देवभूति थे, क्योंकि भगवान अपने उन्हीं भक्त को ये सेवा देते हैं जो उनके पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं। तो भगवान के माता पिता के रूप में जगन्नाथ मिश्र और माता सची, सची माता के रूप में भगवान को पकड़ते, हालांकि उनके 8 कन्याओं का जन्म हुआ था उनके घर में, 8 कन्या, लेकिन सारी कन्याएं एक के बाद एक सबका देहांत हो गया छोटी उम्र जन्म लेते ही। तो बड़े दुखी थे दोनों कि हमें एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो भगवान से निरंतर प्रार्थना करते थे, विष्णु शालिग्राम की पूजा करते थे, कहते थे कम से कम एक पुत्र तो हमें दीजिए प्रभु, एक पुत्र तो हमें दीजिए। तो उनका भगवान की इच्छा से जैसे बलराम प्रकट हुए थे रोहिणी के गर्भ में, भगवान के आविर्भाव के पहले। इस तरह से भगवान ने बलराम जी को सबसे पहले भेजा उनका जगन्नाथ मिश्र के बेटे के रूप में, उनका नाम था विश्वरूप। और बलराम जी का ये जो स्वरूप था इतना गुणवान, विश्वरूप जो थे इतना गुणवान थे, इतने मधुर उनका चरित्र था कि उनको सारे वैष्णव बड़े प्रसन्न करते। जन्म से उनको आध्यात्मिकता के विषय में पहले से बचपन से उनको इतना रुचि था, और निरंतर कथा कीर्तन करते थे, भौतिक जीवन में उनका कोई रुचि नहीं था। लेकिन उसके बाद स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होने के लिए जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रवेश किया। भगवान जब प्रकट होते हैं तो साधारण मनुष्य की भांति पुरुष और स्त्री के मिलन से प्रकट नहीं होते। साधारण जीव होता है वो पुरुष के वीर्य में आश्रय लेता है और फिर पुरुष के वीर्य के माध्यम से स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है और फिर गर्भ का स्थिति निर्माण होता है और फिर उसका जन्म होता है। लेकिन भगवान का जो प्राकट्य होता है वो इस भौतिक विनियोग से नहीं होता। भगवान प्रकट होते हैं हृदय के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण, वो सबसे पहले गए जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी उनके हृदय में, उनके हृदय से स्थानांतरित होकर गए सची माता के हृदय में, और सची माता के हृदय से फिर उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया सची माता के गर्भ में। जब सची माता के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया तो अनेक अनेक देवता लोग उनकी स्तुति करने के लिए आते थे निरंतर। कभी कभी सची देवी कहती थी जगन्नाथ मिश्र को कि मुझे अजीब अजीब स्वप्न आते हैं, कई बार लगता है कि कहीं से मंत्रोच्चार हो रहा हो, ऐसा आवाज आ रहा है, लेकिन घंटियां बज रही है कहीं पर, शंख ध्वनि हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता पड़ रहा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब से ये गर्भ में बालक है तब से मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, मेरा मन बड़ा आनंदित रहता है। तो जगन्नाथ मिश्र कहे कि क्या पता भगवान की क्या इच्छा है। तो जब उनके गर्भ से चैतन्य महाप्रभु, जनरली 9 महीना रहते हैं गर्भ में बालक, लेकिन चैतन्य महाप्रभु 1 साल भर लिए बाहर आए हैं क्योंकि वो उचित समय चाहते थे प्रकट होने के लिए। तो वो माघ मास में प्रवेश किया था गर्भ में, और फाल्गुन मास दूसरे साल, जब फाल्गुन मास आया तब तक गर्भ में रहे, और फाल्गुन मास में उस समय देवयोग से चंद्र ग्रहण था, भारी चंद्र ग्रहण। आजकल चंद्र ग्रहण होते रहते, सूर्य ग्रहण होते रहते, लेकिन उस समय जो चंद्र ग्रहण था बड़ा भारी चंद्र ग्रहण था। और शास्त्र प्रमाण के अनुसार विशेष करके भारत के जो लोग हैं वो इसको पूर्ण रूप से फॉलो करते थे उस समय, कि चंद्र ग्रहण के समय पर लोग गंगा स्नान पे जाते थे, पवित्र नदियों के स्नान के लिए जाते थे और हरि ध्वनि करते थे, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते थे। सब लोग जोर जोर से हरि हरि कृष्ण राम इस तरह से जोर जोर से उच्चारण करते थे भगवान के नाम का। तो बहुत कोलाहल होने लगा गंगा स्नान पर, जोर जोर से आवाज आने लगी हरे कृष्णा, जोर जोर से आवाज आने लगी हरी हरी, जोर जोर से आवाज आने। और जो मुस्लिम लोग जो थे वो लोग सब लोगों को देख करके वो लोग भी हंसने लगे, मजा देखो ये लोग हरी हरी करते हरी हरी, इस तरह से वो लोग भी हरी हरी बोलना शुरू कर दिए। और इतना कोलाहल हुआ कि सारा ब्रह्मांड भर गया, सब जगह एक ही ध्वनि प्राप्त होती थी, क्या ये तो आपका हॉल भी नहीं भरा, थोड़ा जोर से। तो हम तो ब्रह्मांड भरने की बात कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ब्रह्मांड भर दिया उनके प्राकट्य से पहले। तो अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर इतने प्रसन्न हुए, आज तक पहले कभी नहीं सुना, सब लोग एक साथ मिलकर के भगवान के जीवनामा का उच्चारण कर रहे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये चंद्र ग्रहण कभी समाप्त ना हो, ये हमेशा चलता रहे और लोग हमेशा हरिध्वनि करते रहे, निरंतर ये हरिध्वनि चलता रहे, ऐसी प्रार्थना की अद्वैत आचार्य ने। लेकिन ये वही समय था जिस समय पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने का निर्णय किया था। सर्व सद्गुण प्रणाम ताम वंदे फाल्गुनी पूर्णिमा, सभी गुणों से पूर्ण जो फाल्गुनी पूर्णिमा है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्याम श्री कृष्ण चैतन्य, जहाँ जिस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अवतीर्ण कृष्ण नाम भी प्रकट हुए, कृष्ण नाम के साथ, कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ सब लोग कीर्तन कर रहे थे, तब उन्होंने प्रकट होने का निर्णय किया संध्या समय में। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे तो बचपन में उनको जिस तरह से वो नाम के साथ प्रकट हुए उसी तरह से जब कभी भी वो रोते थे तो उनको शांत करने का एक ही उपाय था, जब रोना शुरू करते थे तो उनको चॉकलेट टॉफी वगैरह से वो चुप नहीं होते थे, ले लो बेटा उसको नहीं, एक ही उपाय था क्या, अगर कोई हरी हरी बोलेगा तो चुप हो जाएगा तुरंत हंसता शुरू। और जैसे छोटा बच्चा जैसे ही कोई बोलना बंद करेगा तुरंत उनका रोना शुरू, और जैसे ही गोपियाँ माई ये स्त्रियाँ माता है जब जैसे ही शुरू करेंगे हरी 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 तुरंत चुप और मुख पे बड़ा सुंदर सा हास्य। तो प्रतिदिन ऐसा होता था और बहुत सारे देवता आसपास के जो प्रसिद्ध लोग थे वो सब जगन्नाथ मिश्र को बधाई देने के लिए उनके घर निरंतर आते थे, कुछ न कुछ भेंट लेकर के। अद्वैत आचार्य ने अपनी पत्नी सीता देवी को भेजा कि जाओ तुम बालक को भेंट दो, श्रीवास ठाकुर ने अपनी पत्नी मालिक को भेजा कि आप जाओ। तो इस तरह से अलग अलग स्त्रियाँ सची माता को बधाई देने के लिए आती थी, लेकिन देवताओं को भी उस बालक के दर्शन करने की बड़ी तीव्र कामना थी। तो कई देवता भी, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी दुर्गा देवी सब कई देवता भी छद्म वेश लेकर के जगन्नाथ मिश्र के घर पे आते थे, लेकिन इतने सारे देवता सची माता सोचे इन लोगों को तो कभी देखा भी नहीं हमारे गाँव में, ये कहाँ से आ गए और इतने सुंदर दिखते हैं। कुछ देवता आते थे बिना दिखे अदृश्य रूप में, तो कभी कभी उनकी परछाई दिख जाती थी तो लोग बोलना शुरू कर देते थे विष नरसिंह देव बचाओ कोई भूत आ गया। हालांकि वो देवता आते थे दर्शन करने के लिए निमाई के चैतन्य महाप्रभु के, जब भगवान 4 महीने के उम्र के थे छोटे से, तो एक बार उन्होंने ऐसा किया कि उनके घर में जितना सामान भंडार जो कुछ भी रखा था सब कुछ तोड़ दिया, और सब कुछ तोड़ करके फिर वापस लेट गए और रोने लगे। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता चनक से देखा घर में इतना सारा तोड़फोड़ किसने मचाया, छोटे बालक को क्या किसी असुर ने प्रहार किया क्या, अवश्य ही कोई असुर आया होगा यहाँ पर बालक को आक्रमण किया है, इसलिए तुरंत उन्होंने स्पेशल पूजा आरंभ कर दी। भगवान विष्णु का जो शालिग्राम था उनकी पूजा आरंभ कर दी उन्होंने। इस तरह से बाल्यकाल में कुछ समय के पश्चात नामकरण विधि का आयोजन किया गया भगवान के नाम पर, और नामकरण के समय उनका भविष्यवाणी भी होता है क्या करेगा ये बार। तो नीलंबर चक्रवर्ती को बुलाया, जो कि सची माता के नाना थे, उनको बुलाया, चैतन्य महाप्रभु के नाना। तो नीलंबर चक्रवर्ती वहाँ पर आए और उन्होंने उनका कुंडली बनाया और कहा कि ये बालक जो है, ये सबका उद्धार करने वाला है, सबका पालन करने वाला है, सबको धारण करने वाला है, इसलिए इसके लिए उत्तम, सबसे उत्तम नाम है विश्वंभर। और सची माता ने उनको नाम दिया क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे, इसलिए उनका एक नाम रखा गया नीमाय, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। और ऐसे भी उनको नाम पसंद था क्योंकि ऑलरेडी एक असुर आ गया था, पहले भूत का परछाया दिख गया था उनको, तो ये नाम अच्छा है नीमाय। वहाँ की जो कुछ महिलाएं थी उन्होंने कहा कि ये तो हरी हरी बोलने से चुप हो जाता है रोते हुए, इसलिए इसका नाम होना चाहिए गौर हरी, उनका ऐसे वर्ण गौर है, इसका नाम होना चाहिए गौर। और जगन्नाथ मिश्र कहे कि इसका वर्ण अंग जो है वो पूरा सोने जैसा है, इसलिए इसका नाम होना चाहिए गौरांग। इस तरह से अलग अलग नाम उनको दिए, लेकिन उनका जो मूल नाम रखा गया वो विश्वंभर, जो सारे सृष्टि को धारण करने वाले, सारे सृष्टि में भगवान का जो प्रेम का प्रचार करने वाले। हालांकि भविष्यवाणी में उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि ये बालक जो है आगे जाके संन्यास भी लेगा, ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई, केवल इतना ही बताया कि ये बालक जो है वो सारे सृष्टि, सारे पृथ्वी को हरि नाम से, भगवान के प्रेम से भर देगा और एक राजा की भांति रहेगा। हाँ, इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी। लेकिन साथ साथ में और एक विधि सेरेमनी आयोजित की थी, जब बच्चा जब छोटा होता है तो उनकी वृत्ति देखने के लिए उनके सामने अलग अलग चीज़ रखी जाती है, इसमें कलम होती है, फिर धन होता है, श्रीमद् भागवत होता है, इत्यादि कई चीज़ रखी जाती है। और फिर बालक को कहा जाता है कि बेटा तुम्हें जो इच्छा है उसे तुम पकड़ लो, छू लो। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को मुक्त किया छूने के लिए, दौड़ कर चले गए श्रीमद् भागवतम की ओर और श्रीमद् भागवत को पकड़ लिया। तो सब लोगों ने जोर जोर से हरी ओ जोर जोर से बोलने लगे, कहा कि ये बालक जो है ये श्रीमद् भागवत का प्रचार सारे संसार में करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में थोड़ा चलना सीखे, तो जैसे चलना सीखे तो इतना रेस्टलेस बन गए, इतना नटखट बन गए, एक सेकेंड भी उनके पांव एक जगह पर नहीं रहते, कभी इधर भागते कभी उधर भागते, कभी किसी कोने में चले जाते कभी उस कोने में चले जाते, कभी किसी कहीं छुप जाते, बहुत नटखट बन गए, बहुत नटखट बीमारी, बहुत नटखट। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर के बाहर उनका दर्शन करने के लिए स्वयं अनंत शेष भगवान आए थे। अनंत शेष जो है वो सांप के रूप में वहाँ पर आया था और वहाँ पर आकर उन्होंने पूरा आसन बना दिया। और निमाई बच्चा उसने देखा, अरे मेरी सैया जहाँ पर मैं विश्राम करता हूँ हमेशा, तो तुरंत आकर के उसके ऊपर लेट गए, उस सैया के ऊपर। और किसी ने बताया जगन्नाथ मिश्र को, अरे भाई तुम्हारा बच्चा नाक सांप से खेल रहा है बाहर, देखो तो दौड़ते दौड़ते निमाय निमाय कुछ लोग बोलने लगे गरुड़ा गरुड़ा, गरुड़ के सांप का दुश्मन, तो सब कुछ लोग बोलने लगे गरुड़ा गरुड़ा। और जब दौड़ के आए निमाय को तुरंत पकड़ लिया और सांप को अनंत शेष का देखा, यहाँ तो सब लोग चिल्ला रहे, इधर तो सब डर गए, भागना पड़ेगा इधर से, चलो जाओ यहाँ से। तो वो तो चले गए लेकिन निमाय उसके पीछे पीछे दौड़े, निमाय बोले नहीं नहीं कहाँ जाते हो, रुको मुझे सोना है। हालांकि वो तो बालक के रूप में थे, स्वयं भगवान थे लेकिन बालक के रूप में थे। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको ले गए घर के भीतर में, और फिर नान खट करते, इतना परेशान कर रहे थे, कभी किसी के घर पर जाके मटकी वटकी फोड़ देते थे जैसे कृष्ण लीला में भगवान करते थे, उस तरह से कभी मटकी फोड़ते, कभी बच्चे के कान में पानी डाल देते, छोटे बच्चे के कान में कभी उनको पिंच करते ताकि बच्चा रोना शुरू कर दे। नान खड़ी करते थे, सब जगह सबको परेशान करते थे, लेकिन फिर भी सब उनको बहुत प्यार करते थे। कैसा बालक है, उसको देखते ही हमारा मन मोहित हो जाता है, कैसा बालक है। एक बार ऐसा हुआ कि जिस तरह से बालक खेल रहे, तो सची माता उनको बड़े सुंदर आभूषणों से हमेशा लगाते थे, उनको श्रृंगार करते थे, उनके हाथ में माला होती थी, गले में माला, हाथ में कंगन वगैरह, कमर में बांधते थे, इस तरह से अलग अलग आभूषण देख। एक बार ऐसा हुआ कि दो चोरों ने देखा कि ये निमाय के शरीर में बहुत अच्छे अच्छे आभूषण हैं, अगर इसका चोरी हो गया, इसको हमने चोरी कर लिया तो अपना काम हो जाएगा। तो दो चोर आए निमाय के पास, निमाय को कहा बेटा देखो हम तुम्हारे पे क्या क्या है, संदेश मिठाई, बड़ा स्वादिष्ट संदेश है, अरे तुम कब से खेल रहे हो बाहर, क्या तुम्हें घर नहीं जाना, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, घर ले जाने के लिए तो आए हैं। तो तुरंत मैं बोले हाँ हाँ चलो चलो मुझे तो घर जाना ही है। और तुरंत एक चोर ने निमाय को अपने कंधे पे बिठा दिया और निमाय को बिठा करके ले गए घुमाते हुए, बड़े प्रसन्न हो गए, आ गया हमारे हाथ में, आ गया निमाय, आ गया। एक चोर ने कहा देख भाई कंगन मैं लूँगा, दूसरे ने कहा नहीं मोती की माला मेरी है, वो मैं लूँगा, किसी ने कहा देख नुपुर है वो मेरा है वो मैं लूँगा। तो इस तरह से दोनों चोर आपस में डिसाइड कर रहे थे कौन क्या लेगा, और भाग रहे थे पूरे गांव में चक्कर लगाया, भाग रहे थे, उनका घर नहीं आ रहा था, वो अपने घर जा रहे थे उसको लेकर के, और पूरे नगर में परिभ्रमण करके पूरा शोभा यात्रा करके निमाय को कंधे पर बिठा करके अंत में भगवान ने ऐसी माया बनाई कि उनको लगा कि वो अपने निवास स्थान में आ गए। और अपने निवास स्थान में आए, जैसे ही निमाय को कहा कि बेटा अब उतर जाएंगे, घर आ गया, हाँ निमाय बोला घर आ गया अब मुझे उतार दो। और नीचे जैसे नीचे रखा तो देखा कि सामने जगन्नाथ मिश्र, सची माता, अरे ये कहाँ से होगी। और जैसे ही निमाय को देखा उस साइड जगन्नाथ मिश्र चिल्लाने लगे मेरा निमाय कहाँ चला गया, मेरा निमाय कहाँ चला गया। और चोरों ने उधर लाकर छोड़ा और कहा, और जैसे देखा निमाय ने पिताजी को, वो पिताजी दौड़ करके चले गए जगन्नाथ मिश्र की गोद में, है ना। और ये चोर देखा, अरे हम तो घूम फिर के निमाय के घर पे आ गए, उनके घर पे आए, इसलिए तो निमाय ने कहा मुझे छोड़ दो मेरा घर आ गया। तो दोनों भाग गए, अरे पकड़े जाएंगे, हमारी पिटाई हो जाएगी, भागो यहाँ से। बड़े प्रसन्न हुए जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र ने पूछा आजू बाजू बच्चों को, पूछा भाई कौन थे, भाई क्या हो गया, कहाँ गुम हो गया था मेरा बेटा। तो बोले कुछ समय पहले यहाँ पर दो लोग आए थे जो निमाय को अपने कंधे पे बिठा करके ले गए थे, अच्छा फिर मतलब कुछ समय के बाद वापिस आ गए, वापिस आ गए उनको छोड़ दिया, गुम हो गया वो रानीमाई। तो जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे कि अरे वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे बच्चे को ढूंढ कर दिया, मैं कितना चिंतित हो रहा था मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। किसी किसी बाप का बेटा जब गुम हो जाता तो कितना परेशान हो जाता। जगन्नाथ मिश्र बिल्कुल वैसे परेशान थे, और जैसे दो चुबोले उसको रोकना चाहिए था ना, मैं उनको हेल्प करता, भेंट देता, थैंक यू कहता, तुमने मेरे बच्चे को वापस ला के दिया, है ना, कोई बात नहीं। इस तरह से हनुमाई पूरे नगर का परिभ्रमण किया उस दोनों चोर के कंधे पर बैठ करके। कभी ऐसा होता है हनुमाई को जगन्नाथ मिश्र आदेश देते घर पे कि बेटा जाओ दूसरे कमरे में से मेरी किताब लेके आओ, तो किताब मंगवाते अभी हनुमाई छोटा सा बच्चा, और हनुमाई जैसे वो किताब लेने के लिए जाते अंदर, तो एक बार जगन्नाथ मिश्र ने सुना कि जैसे ही हनुमाई अंदर के कमरे में गए तो हनुमाई के उस कमरे में से नूपुर की आवाज़ आने लगी, छन 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 ऐसे। अरे हनुमाई के चरण में तो कोई नूपुर नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से आई। तो जाके भीतर देखा अंदर, तो उस कमरे में कुछ फुटप्रिंट लगे हुए थे, इम्प्रिंट्स, चरण चिन्ह। कैसे चरण चिन्ह थे, जिसमें पताकाएँ थी, मत्स्य थे, जो भगवान के चरण चिन्ह के जो लक्षण हैं वो सारा चिन्ह, वो चरण वहाँ पर उनको दर्शन हुआ। अरे सखी माता इधर आओ इधर आओ, जो उनके माता सची देवी जो थे, बोले देखो तुम्हारे घर में भगवान के चरण चिन्ह है। सची सची देवी बोले अरे ये कैसे हो गया, कैसे संभव हुआ। जगन्नाथ मिश्र ने कहा अवश्य ही हमारे जो शालिग्राम जो है ना, नारायण शालिग्राम शिला, वो हमारे घर पर लीला कर रहे हैं, वही हमारे घर में प्रकट हुए हैं, और उनके ही चरण चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं नारायण के रूप में। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाल में अनेक अनेक लीलाएं की थी जगन्नाथ मिश्र के साथ रह करके। लेकिन एक बार एक सपना देखा जगन्नाथ मिश्र ने, उस सपने में एक बहुत प्रसिद्ध बहुत विद्वान देखने वाला ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र को सपने में आके कहा अरे जगन्नाथ मिश्र तुम जिस बालक को अपना बेटा मान रहे हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है। हाँ तो बोले वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि सब उनकी पूजा करते हैं, योगी जिसका ध्यान करते हैं, सहस्र सहस्र लक्ष्मी देवी जिनकी सेवा कर रही है, वो साक्षात कृष्ण साक्षात भगवान तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं, इसलिए उसको साधारण बालक मानने का गलती मत करो। तो जगन्नाथ मिश्र उस ब्राह्मण को कहा भाई वो नारायण हो कृष्ण हो या कोई भी भगवान हो, मेरे लिए तो वो मेरा बेटा है, मैं केवल यही जानता हूँ कि भगवान वो मेरा बेटा है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। इस प्रकार का सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र के घर पे उनके हृदय में इतना तीव्र प्रेम था, वो ब्राह्मण बिना कुछ कहे फिर वापस चला गया सपने में। लेकिन एक बार एक यात्री ब्राह्मण उनके घर पे आया, एक ब्राह्मण जो यात्रा कर रहा था अलग अलग स्थानों पे, वो ब्राह्मण उनके घर पे आया, उनका स्वागत किया जगन्नाथ मिश्र ने, और जगन्नाथ मिश्र ने उनको पूछा कि हे प्रिय ब्राह्मण आप कहाँ के हो, किस उद्देश्य से इधर आए हो, आप बड़े विद्वान और पवित्र जान पड़ते हैं, अगर आप मुझ पर कृपा करें तो मेरे घर पे आप पधारिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हम आपको भोजन अर्पण करना चाहते हैं। तो वो ब्राह्मण ने कहा कि देखो मैं तो यात्रा करने वाला ब्राह्मण हूँ, एक स्थान पे नहीं रहता, मैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरह से भ्रमण करता हूँ और भगवान का गुणगान गाता रहता हूँ, यही मेरा काम है। मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी इच्छा है कि आपके घर पे मैं रहूं और भोजन लूं, तो मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूं। और ब्राह्मण उनके घर पे आए और जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे ब्राह्मण, हम बताइए हम आपके लिए क्या भोजन का व्यवस्था करें। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं मेरा भोजन स्वयं बनाता हूँ, मैं कभी दूसरे का हाथ का नहीं खाता, इसलिए मुझे केवल कुछ फल और सब्जियाँ ला के दे दो बस। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे घर पे आए हो, केवल फल सब्जियों से नहीं होगा, आप अन्न खाइए, राइस दाल सब्जी सब खाइए, आपको सारी सुविधा बना के देते हैं। तो कहा कि देखो, मैं तो जंगल में घूमता हूँ, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता, तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं संतुष्ट हूँ। बोले नहीं, ये हमारा अगर आप मुझे अपना दास मानते हो तो कृपा करके मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार लो। तो ठीक है, दे दो मुझे सारी सुविधा। तो फिर सब प्रकार के व्यंजन बनाने की सारी सुविधा दे दी और ब्राह्मण ने पूरा कुकिंग किया, रसोई बनाई। और उनके पास गोपाल जी का विग्रह था और वो गोपाल जी विग्रह वो हमेशा अपने साथ में लेकर घूमते थे। और उस विग्रह को उस ब्राह्मण ने भोग लगाने के लिए मंत्रोच्चार करना शुरू किया। पूरा भोग लगाया, प्लेट बना दी, तुलसी पत्र रखा और घंटी हाथ वाली बजाना शुरू किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय, वो ब्राह्मण ऐसे बोलना शुरू कर दिया, भोग लगाना शुरू किया। जैसे भोग लगाया, घंटी बजाई, मंत्र बजाया, तुरंत निमाई वहाँ पर आकर के उस भोग में जो रखा था सब खाने लगे तुरंत। और ब्राह्मण ने आँख खोली, देखा, हाय हाय, ये बालक ने मेरा पूरा भोग नष्ट कर दिया, कौन है ये बालक, इतना दुष्ट। तुरंत जगन्नाथ मिश्र दौड़ करके आए, सची माता दौड़ करके, क्या हो गया? बोले, इस बालक ने मेरा भोग पूरा विफल कर दिया, इसने जूठा कर दिया, अब ये भोग नहीं लग सकता। तो जगन्नाथ मिश्र बड़े दुखी हुए, जब सची को माता को बोले, ले जाओ उस बच्चे को, जो कहा हाथ जोड़ के कहा, कृपा करके आप दुखी ना हो, आप एक बार फिर से भोजन बना लीजिए। बोले, नहीं, मुझे भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आप थोड़ा सा फल दे दो, मैं खा लूँगा बस। मुझे नहीं, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, अब तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए आप कृपा करके भोजन बनाइए। पूरा व्यवस्था फिर से किया, फिर से भोजन बनाने का शुरू किया। शाम को शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, अभी रात को 10-11 बज गए। और पूरा भोजन बनाया और भोजन बना करके फिर से भोग लगाया, भोग लगाने के लिए मंत्र बोले, घंटी बजाई, जैसे ही ध्यान करना शुरू किया, तुरंत कहीं से निमाई आकर पहुंच गया। सची माता ने कहा था, जगन्नाथ मिश्र ने कहा था माताओं और महिलाओं को कि तुम इसको खेलो, इसके साथ इसको बिजी रखो ताकि वो वहाँ पर ना पहुँच जाए। और पता नहीं वो इतना नचखर, इतना हंसता था, खेलता था, कहीं से पता नहीं कहाँ से छू हो गया सबके बीच में से और पहुँच गया सीधा वो ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण के पास जाकर सीधा हाथ लगा दिया उसने भोजन में, और जैसे ही आँख खोली फिर से देखा वही बालक, हाय हाय, ये बालक फिर आ गया, पूरा नष्ट कर दिया मेरा ये भोग, अब तो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, अब तो मुझे फल ला के दो। जगन्नाथ मिश्र बोले, लाठी लाओ, मुझे लकड़ी दो, लकड़ी तो मैं इस बालक को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ मैं बहुत पिटाई करूंगा इसका। भाई, बच्चा है, क्यों पिटाई करते हो? बच्चे को कहाँ पता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या फायदा होगा पिटाई करने, मत करो ऐसा, करो छोड़ दो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मुझे फल दे। नहीं, ये संभव नहीं है, मैं आज इतना क्रुद्ध हो गए। पर फिर घर के लोगों ने भी बोला कि बच्चे को मारो मत, मारो मत। तो वहाँ अचानक उनका बड़ा भाई विश्वरूप अंदर प्रवेश किया घर के अंदर, और उनके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था, वो ब्राह्मण देखकर दो मिनट तो देखते रह गए, बोले, कौन है ये बालक? जगन्नाथ मिश्र को कहा कि ये बालक कौन है? बोले, मेरा बड़ा बेटा है। और जब विश्वरूप ने सब जान लिया कि क्या बात हुई है, तो जगन्नाथ मिश्र वो ब्राह्मण ने देखा कि इसका व्यवहार तो बड़ा मधुर है, ये तो बोलता भी बड़ा स्वीट है, तो उससे बड़े मोहित हो गए। तो विश्वरूप ने उनके ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए कहा कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा पवित्र ब्राह्मण हमारे घर में प्रवेश किए, लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरा ये नटखट भाई वो तुम्हारा पूरा भोग विफल कर दिया बार बार, ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, एक बार फिर से आप भोग बनाइए। बोलिए रात का समय हो गया, मध्य रात्रि हो गई, अभी आप मुझे कह रहे हो भोग बनाए के लिए। हाँ, एक बार जैसे विश्व रूप ने इतना प्रेम से बोला, जगन्नाथ मिश्रा है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ आप कृपा करके एक बार भोग लगा। मैं उसको लॉक करके रखूँगा, कमरे में बंद कर दूंगा उसको, वो आएगा ही नहीं अभी, उसको मैं सुला दूंगा। और सब घर के लोग सदस्य आए, विनती किया एक बार फिर से भोग लगाइए प्लीज। तो ब्राह्मण बोले ठीक है ठीक है। अभी मध्य रात्रि हो गई, सब लोग सो गए, जगन्नाथ मिश्रा निमाई के कमरे के बाहर डंडा लगे बैठ गए, बोला भाई घर के बाहर आए नहीं चाहिए कमरे के बाहर। और निमाई भी मस्त सो गए पूर्ण, सब घर के सारे सदस्य सो गए, और ये भाई ब्राह्मण जो थे वो कुकिंग करके भोग लगाने वाले थे। और जैसे भोग लगाने के लिए मंत्र चार शुरू करना शुरू किया, घंटी बजाना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, और जैसे देखा तो क्या वो बालक ने सबको सुला दिया, और वो खुद उठ करके आ गया, और वो भोजन स्पर्श किया और वो खाने लगे। और अब के बाद उसने फिर से चिल्लाया, हाय हाय ये बालक फिर से आ गया, लेकिन इस बार उनकी बात सुनने वाला कोई था ही नहीं, सब सो गए थे, सबके सब सो गए थे। लेकिन अब निमाई ने कहा, अरे भाई इतना चिल्लाते क्यों हो, अजीब ब्राह्मण हो, जितनी बार मंत्र बोलते हो मुझे बुलाते हो खाने के लिए, और जितनी बार बुलाते हो उतनी बार मैं आता हूँ, तुम्हारा भोग स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ, और तुम्हें परेशानी होती है, चिल्लाने लगते हो क्यों आ गया क्यों आ गया। तो वो ब्राह्मण को भगवान ने सुंदर दर्शन दिया, बोले हे ब्राह्मण तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। कहा कि तुम वही ब्राह्मण हो, पूर्व जन्म में तुम नंद महाराज के घर पे आया करते थे भोग लगा यात्री के रूप में, और वहाँ पर नंद महाराज के यहाँ भोजन लेते थे, और मैं वही कृष्ण जो नंद महाराज का बेटा था वही मैं निमाई इस रूप में प्रकट हुआ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, देखो ये मेरा दर्शन कराया। कैसा दर्शन कराया, उन्होंने अष्टभुज दिखाया, अष्टभुज आठ हाथ वाला स्वरूप, जिसमें से चार हाथ थे शंख चक्र गदा पर, और दो हाथ थे जिसमें मक्खन था, और दो हाथ थे जिसमें बांसुरी थी। तो ये अष्टभुज का दर्शन उस ब्राह्मण को दिखाया। इसके साथ साथ भगवान ने उसको दिखाया कल्प वृक्ष, यमुना की पीछे यमुना नदी, कदम के वृक्ष, गोप गोपियाँ, गाय, इस सब वृंदावन का पूरा दृश्य उसको दर्शन दिया। वो धन्य हो गया, ओ स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, आपने मेरा भोग स्वीकार किया। लेकिन निमाई ने उनको कहा, लेकिन इस बात को तुम भविष्य में किसी को बताओगे नहीं कि मैंने तुम्हें ये दर्शन दिया था, ये तुम कभी किसी को बताओगे नहीं। अगर कभी तुमने ये बताने का प्रयास किया तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, ऐसा भगवान ने उसको वार्निंग दे दी, मत करना ये काम। तो फिर अपना रूप वापिस निमाई के रूप में रख लिया, और ये सब कोलाहल हुआ तो उसे जगन्नाथ मिश्र उठ करके आए बाद में, आके देखा तो ब्राह्मण तो पूरा शरीर पर उसके राइस थे, सब जगह फैले हुए थे राइस, और सब बिखरा हुआ पड़ा था। बोले क्या हुआ क्या हुआ ब्राह्मण, तो बोले मेरा भोग सफल हो गया, इस बार भोग लग गया। और देखा कि ये ब्राह्मण तो इतना संतुष्ट हो गया है कि पेट भरने के बाद पूरे शरीर पर भी राइस लगा दिए इन्होंने। तो इस तरह से भगवान ने उस ब्राह्मण को विशेष कृपा दिया था। लेकिन इस प्रकार की जब भगवान लीला प्रस्तुत करते थे तब उनकी उम्र इतनी छोटी थी, हालांकि वो सब सृष्टि के स्वामी है, सब कुछ उनका अपना है, इसलिए कभी कभी ऐसी कामना करते थे, कभी सची माता कहते थे कि हे माता वो चंद्रमा है ना वो मुझे ला के दो, बस वो हट करते थे वो चंद्रमा ला के दो। कभी वो तारे को देखते थे, कभी पक्षियों को देखते थे, बोले ये सब मुझे दे दो, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, सब मुझे दे दो। अगर नहीं देते तो रोने लगते थे, जोर जोर से रोने लगते थे। और जब रोने के बाद उनका रोने को ठीक करने का उपाय क्या था, क्या था? अच्छा, सबके लिए प्रसाद तो होगा ही है ना, लेकिन जो निमाय को अगर रोते हुए चुप करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ये भी बोलना पड़ेगा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उनका वो हरी हरी बोलने पर भी रोना बंद नहीं किया, तो और जोर से बोले हरी हरी, तो फिर से और जोर से रोना किया शुरू, और फिर जोर जोर से हरी हरी बोले, और उन्होंने निमाय और जोर से रोना किया शुरू। तो बाद में फिर पूछा, भाई अब क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या हो गया है, क्या चाहिए? निमाय ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं रोना बंद करूं तो क्या चाहिए मुझे, 2 माइल दूर पर 2 ब्राह्मण भाई है, एक का नाम है हिरण्य पंडित और दूसरे का नाम है जगदीश पंडित। ये दोनों भाई जो है उनके घर से मुझे भोजन ला के दो। तुरंत भेजा जाओ। तो बोले क्या ये क्या बात कर रहे हैं, 2 माइल दूर कोई ब्राह्मण है, तो फिर उनके घर पे भेजा किसी को लेने के लिए, तो कहा कि भाई आपने कुछ भोजन बनाया है? बोले आज एकादशी है लेकिन हमने ठाकुर जी को बहुत बड़ा फिस्ट ऑफर किया है। जनरली एकादशी के दिन हम भगवान को अन्न नहीं, हम लोग अन्न नहीं खाते, लेकिन भगवान को इस प्रकार के उपवास नहीं होते, भगवान के विग्रह को तो पूरा भोग लगता है। तो ठाकुर जी को बड़ा सुंदर भोग लगाया था, बोले उसमें से वो जो बनाया वो मुझे खाना है। अर्थात भगवान जी फिर से निमाय बताना चाहते थे कि मैं वही शालिग्राम हूँ जिसको तुम भोग लगा रहे हो। तो फिर वो भोजन वहाँ से मंगवाया गया और सब लोग चकित हो गए कि निमाय किस प्रकार का बालक है, और कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो भविष्यवाणी थी उसके अनुसार ये बालक साधारण बालक नहीं। निमाय गंगा तट के पास उनका निवास था, लेकिन गंगा में बहुत प्रकार की लीलाएं करते थे। गंगा में उनके मित्र के साथ जाते थे और पानी वाटर स्पोर्ट्स करते थे, पानी फेंकते थे एक दूसरे के ऊपर, और नटखट पर उनका बहुत नटखट थे। ये उनका नटखट जो लीलाएं करते थे, तो उसके कारण ब्राह्मणों का एक ग्रुप जगन्नाथ मिश्र को कंप्लेन करने के लिए आया था। और ब्राह्मणों ने क्या कहा, भाई तुम्हारा जो बेटा है निमाय वो क्या करता है आपको कभी कुछ पता है क्या? जगन्नाथ मिश्र बोले क्यों क्या हुआ? बोले मैं हम लोग स्नान करने जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए तट पर, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं गायत्री जप कर रहा था और उसने मेरी टांग खींच ली नीचे से। दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि मेरी गीता चोरी करके भाग गया, मैं गीता पढ़ने वाला था गीता चोरी करके भाग गया। और एक ब्राह्मण ने कहा कि अचानक से आकर मेरे कंधे पे बैठ गया और बोला मैं शिव हूँ शिव। और एक ब्राह्मण बोले कि मैं जैसे स्नान करके बाहर आया तुरंत उसने मेरे मुंह पे पानी का कुल्ला कर लिया, मुझे फिर स्नान करके जाना पड़ा। दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि मैं जब स्नान करने गया तो मेरे वस्त्र पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, उसको मैं ढूंढता ही रह गया, बाहर आके क्या करूँ। दूसरे एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं जब स्नान कर रहा था तो ध्यान में लगा हुआ था और ध्यान में लगे अचानक से मेरे कान में आकर जोर से चिल्लाया, तो मेरा पूरा ध्यान भंग हो गया। और कभी हम विष्णु की पूजा करते थे तो बोलते बोले क्या विष्णु की पूजा करते, मैं ही तो विष्णु हूँ, मेरी पूजा करो। और एक ब्राह्मण ने कहा हे अरे इस बात एक दिन तो तुम्हारे बालक ने क्या किया था, पुरुषों के स्नान करने का स्थान अलग होता है, स्त्रियों के स्नान करने का स्थान अलग होता है, तो उसने क्या किया पुरुषों के स्थान पे जो वस्त्र रखे थे वो उठा करके स्त्रियों के स्थान पर रख दिए और स्त्रियों के स्थान के सारे वस्त्र उठा करके इधर रख दिए और हम सब बड़े परेशान हो गए। तो इस तरह जगन्नाथ मिश्र के पास बहुत सारी कंप्लेन आती थी और वहाँ पर सचिव माता के पास भी मैं स्त्रियाँ आती थी कंप्लेन करके, बोले तुम्हारे बेटे ने क्या क्या किया तुम्हें पता है, कुछ जवान लड़कियाँ थी वो बोले कि हम लोग तो शिव जी की पूजा करने जाते हैं, विष्णु की पूजा करने जाते हैं, अच्छा वर प्राप्त हो, अच्छा हस्बैंड प्राप्त हो, इसलिए हम उनकी पूजा करने जाते हैं, और तुम्हारा बालक बेटा आके क्या करता है, कभी आता है वो संदेश लड्डू जो कुछ भी होता है वो सब खा जाता है और जो फूल होता है वो सब ले लेता है और बोलता है कि ये सब तो मुझे अर्पण करने के लिए, ये मेरे लिए है, क्या पूजा कर रहे हो, शिव जी तो मेरा दास है। तो बोले हाय हाय ये बच्चा कुछ भी बोल देता है। फिर एक लड़की ने कहा कि हमने पूजा किए थे हस्बैंड को प्राप्त करने के लिए और उसने आके हमने कहा कि देखो ये सारा सामान अगर तुम मुझे हमें मुझे खिलाओगी और मुझे चंदन कमरा जब मुझे अर्पण करोगी तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा, बहुत सुंदर पति प्राप्त हो और बहुत धनवान हो और सौ सौ बेटे पैदा जन्म हो, ऐसा वरदान दूंगा, अगर तुमने ये कार्य नहीं किया, अगर तुमने मुझे सब पूजा का सामान मुझे नहीं दिया तो तुम्हें ऐसा बूढ़ा पति प्राप्त होगा जिसके आगे चार चार पत्नियां होती हैं, ऐसा बूढ़ा ऐसा श्राप देता। अब डर के मारे हम क्या करते, अब डर के मारे हम उसको दे यार ठीक है भाई तुम खा लो। और कभी कहते कभी किसी स्त्री के किसी लड़की के पास स्नान करके आते तो उसको मिट्टी डाल देते उसके ऊपर, और कभी किसी लड़की को आगे बोलते बोले तुम मुझसे शादी करोगी, पर इस तरह से इतना नटखट करता था ये बच्चा, इतना परेशान करता है हम सबको। तो जगन्नाथ मिश्र और सचिव माता दोनों ही बहुत चिंतित हो गए, पर ये बच्चा क्या करे, इसका क्या नटखट है, इतना शैतान है। एक बार मैं इस तरह से कर रहा था शैतानी, तो जगन्नाथ मिश्र एक बार बोले कि आज मैं उसको पकड़ के पिटाई करूँगा। तो लकड़ी लेकर के गए गंगा के तट पर पे और पहले ही निमाई को पता पड़ गया कि पिताजी आ रहे ढूंढते ढूंढते, तो निमाई ने बोल दिया अपने मित्र को कि अगर आके पूछे कि निमाई कहाँ पर है तो बोलना आज स्नान करने के लिए नहीं आया, ऐसा बोलना आज स्नान के लिए नहीं आया और कहाँ गया, स्कूल गया था पढ़ने के लिए। तो सचिव जगन्नाथ मिश्र आए इस साइड और निमाई दूसरे रास्ते से भाग करके पहुँच गए सचिव माता के पास, और माता को कहाँ देखा पूरा शरीर पर मिट्टी मिट्टी डाल के आए थे और हाथ में किताब वगैरह थी, और आगे पूछा सचिव माता ने पूछा बेटा तुम स्नान करने के लिए नहीं गए आज, तो निमाई ने कहा नहीं माता आज मैं पहले सोचा कि पहले घर आ जाता हूँ फिर स्नान करने के लिए जाऊँगा। तो निमाई सचिव माता बोले ठीक है बेटा तुम आ जाओ, और वहाँ पर जगन्नाथ मिश्र गए और पूछा कि तुम्हारा निमाई इधर आया था, बोले नहीं निमाई जी इधर आया नहीं, तो सीधा स्कूल चला गया। ये निमाई छोटा था तो एक बार उसने मिट्टी खा ली थी, और मिट्टी खाई तो यशोदा माता सची माता आकर के कहा बेटा ये क्या कर रहा हो, मैं तुम्हें संदेश दिया खा रहे हो तुम मिट्टी खा रहे हो। तो निमाई ने कहा एक ही तो बात है माँ, संदेश भी मिट्टी से बनता है, मिट्टी भी है तो मिट्टी या संदेश वो तो पृथ्वी से सब कुछ आता है, सब कुछ एक ही है। तो सचिव माता कोई बड़ी विद्वान नहीं थी लेकिन उन्होंने बच्चे को समझा दिया सब कुछ एक कैसे है, मिट्टी खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, संदेश खाओगे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस तरह से अपने बच्चे को समझाया कि मिट्टी जो है वो अलग अलग उपयोग में आ सकती है, इसका बर्तन बन सकते हैं वगैरह, लेकिन वो बिना कच्ची मिट्टी जो है वो किस काम आएगी। अर्थात उन्होंने सिखाया जो मायावादी सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो लोग कहते हैं कि सब कुछ एक है सर्व खलु इदं ब्रह्म, इस जो मायावादी फिलोसॉफी है उसको सची माता ने तोड़ दिया। तो माई बोले तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये चीज कि सब कुछ अलग अलग है। तो फिर इस तरह से निमाई ने मायावादी सिद्धांत को बचपन से ही अपनी माता के माध्यम से तोड़ दिया। एक बार ऐसा हुआ था कि जब बच्चे खेल रहे थे बाहर निमाई और उनके साथियों के साथ, तो जब ये खेलते खेलते उन्होंने कुछ पिल्लों को देखा, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं ना पपी डॉग, उन सबको देखा। तो उसमें जो सबसे खूबसूरत पपी था वो निमाई ने ले लिया, ये मेरा पपी है। बाकी सब अलग, कुछ मित्रों ने कहा ये गलत बात है, देखो सबसे अच्छा पपी था वो तुमने ले लिया, ये ना ये मेरा पपी है, ये मैं अपने पास रखूँगा, तुम अपने पपी अपना अपना ले लो। तो सब लोग अपने अपने पपी लिए। किसी ने जाके को दुखी हो गया, एक लड़का बोले अच्छा सबसे अच्छा पपी ले लिया, अभी मैं शिकायत करता हूँ माता को जाकर। गया दौड़ करके सची माता के पास। सची माता को कहा अरे माता तुम जानते हो तुम्हारा बेटा कुत्ते के बच्चे पिल्ला जो होता है पपी उसके पास उसके साथ खेल रहा है। क्या मेरा बेटा पपी के साथ खेल रहा है? बोले हम तो ब्राह्मण है, हम इसको स्पर्श नहीं करते, हम तो ब्राह्मण है, जाओ बुला के ले गया उसको। निमाई सुंदर पपी को अपने साथ लेके आया और बेटे कहा निमाई पपी को छोड़ दो, तुम जाओ अंदर स्नान करो। तो निमाई ने कहा नहीं माँ, या तो हम दोनों साथ में आएंगे या हम दोनों नहीं आएंगे। अजीब है। तो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी है कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर रखो, तुम स्नान कर लो, भोजन ले लो, उसके बाद तुम खेलना फिर से पपी के साथ। हाँ ये ठीक है माँ, देखो कितना सुंदर पपी है, देखो। यशोदा महाराज सची माता ने हाँ बेटा अब तुम जाओ स्नान कर, भोजन करके स्नान करके जब वापिस आए पपी तो नहीं, पपी को किसी ने खोल दिया, ये तो भाग गया। निमाई आके चिल्लाने लगे मेरा पपी कहाँ पर है? सची माता कहाँ बेटा यहीं कहीं होगा, चलो ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पर है तुम्हारा पपी। नहीं मुझे मेरा पपी चाहिए, मेरा पपी मुझे वापिस ना दे दो, कैसे भी करो। तो दौड़ने लगे, ढूंढने लगे कहाँ पर है उनका पपी। और वो पपी जो था बच्चा वो दौड़ करके सड़क में बीच सड़क में जाके गांव के मध्य में जा करके वो रो रहा था निमाई की विरह में। वो निमाई से दूर नहीं रह सकता था, तो निमाई की विरह में रो रहा था और उसके दो पांव उठा ऊपर उठा करके और जो जो उसकी आंखों में से निरंतर अश्रु बह रहे थे और उसके रुएं खड़े हो गए थे और जोर जोर से राधा कृष्णा गोविंदा राधा कृष्णा गोविंदा इस तरह से जोर जोर से हरि नाम जप कर रहा था। लोग भी चकित हो गए देख करके, अरे ये पपी का तो क्या परिवर्तन हो गया, क्या हो गया ये। और सबके सामने एक सुवर्ण विमान आकाश से आया वैकुंठ से गोलोक वृंदावन से और उस पपी को उठा करके ले गए और सबके सामने गुड बाय करके पपी चला गया भगवान के धाम। और ये बात सुन करके कई बड़े बड़े देवता लोग आए निमाई की स्तुति करने के लिए कि हे निमाई आप इतने दयालु हैं कि एक कुत्ता उसको भी आपने कृष्ण प्रेम दान दे दिया। वो जोर जोर से उच्चारण कर रहा है, उसकी आंखों में से अश्रु धार बह रही है, इतना सुंदर भगवान का जो लीला है कि भगवान ने ऐसे भगवान ये विचार नहीं करते कि कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। पापी तापी जत चिलो पात्र पात्र विचार नाही नाही स्थान स्थान। कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है इसका विचार भगवान चैतन्य नहीं करते। कौन धनवान है कौन गरीब है, कौन सुंदर है कौन बदसूरत है, कौन विद्वान है कौन अनपढ़ है, ये सब विचार चैतन्य महाप्रभु नहीं करते। जो जहाँ पर उपस्थित है उसको वहीं पर उसको कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का ये विशेष गुण है। तो चैतन्य महाप्रभु ये निमाई पंडित के रूप में इस प्रकार की जो अलग अलग लीलाएं करते थे उसमें कभी कभी वो अपने मित्रों के साथ गेम्स खेलते थे, अलग अलग प्रकार की जो खेल के मीन्स ब्रह्मांड की शुरुआत से ब्रह्मांड के प्रकट होने के बाद संसार में जितनी भी गेम बनी है वो सारी गेम निमाई पंडित खेलते थे। सब प्रकार की गेम, सब गेम खेल रहे माई। तो इसमें से एक गेम थी हरि नाम की गेम। सब लोग गंगा के भीतर जाएंगे, उनके आसपास सारे बच्चे इकट्ठा होंगे और जोर से चिल्लाएगा ये बच्चे कौन जोर से हरि बोल बोलता है, कौन जोर से मीन्स कौन लंबा तक हरि बोल बोल सकता है। तो बड़ा अजीब बड़ा सुंदर गेम था, सब लोग हरी बोल बोल रहे थे। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं लंबा हरी बोल, प्रयास करना है एक बार, करना है कौन लंबा बोलता है, ठीक है देखते कौन विजेता होता है। तो 3 2 1 हरी। कहीं से आवाज आई। अच्छा तो इस प्रकार की गेम खेलते थे निमाई पंडित, और ये जो गेम खेलते थे उसको देख करके आसपास के जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण भी बड़े आश्चर्य हुए, अरे बड़ा कितना मजा आ रहा है इसमें। तो कोई दो विद्वान ब्राह्मण वहाँ पर आए थे, बड़े प्रखर विद्वान थे, और वो स्नान करने आए, देखा बच्चों को खेल रहे तो वो भी बच्चों के साथ आए, वो भी कूदने लगे नाचने लगे हरि बोल बोलने लगे, और सारे ब्राह्मण मिलकर के बच्चों के साथ हरी ये हरि बोल का गेम खेलने लगे, और पानी उस पानी से एक दूसरे पर छिड़कने लगे, और कपड़े वपड़े सब उन्होंने छोड़ दिए तट के ऊपर, और वहाँ पर सच्ची माता आई बच्चे को बुलाने के लिए। और सच्ची माता ने कहा ये माई खेल रहा है इतने सारे ब्राह्मणों के बीच में, इतने सारे बच्चों के बीच में, बीमार हो जाएगा। और कहा कि तुम ब्राह्मणों के कौन हो, क्या कर रहे हो, तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो, ये बच्चे कब से पानी में हैं, इतने विद्वान ब्राह्मण होकर के ऐसे खा रहे हो, आप बच्चों को खिला रहे हो, चलो निमाई वापस निमाई के लेके गए। वो ब्राह्मण सोचे हाँ यार हम लोग कर क्या कर, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से आ गए इधर, हम ये क्यों कर रहे थे, तो हमें नहीं पता। और एक माता आके हमें डांट के चली गई कि आप क्या कर रहे हो, बच्चों के साथ बच्चे जैसे होंगे। तो सब ब्राह्मण बड़े चिंतित हो, लेकिन निमाई सबको जोर देता था हरि नाम के उच्चारण में, सब प्रकार के उच्चारण में। तो भगवान के जो बड़े भाई थे निमाई के, उनका नाम था विश्वरूप, और विश्वरूप जो थे उन्होंने स्कूल रोज प्रतिदिन अद्वैत आचार्य के पास जाते थे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और अद्वैत आचार्य से फिर उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की तो सबने जगन्नाथ मिश्र को कहा कि देखो तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत गंभीर रहता है, उसको किसी भौतिक कार्य में रुचि नहीं है, अगर आप तुम चाहते हो कि इसको घर में रहना है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि इसका शादी करा दो, तभी ये घर में रह सकता है। तो जब विश्वरूप को पता पड़ गया ये लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं, तो एक दिन किसी को बिना बताए रात को सब कुछ छोड़ करके चले गए सन्यास लेने के लिए। तो विश्वरूप फिर वहाँ से भाग गया, सब बड़े दुखी हो गए, कष्ट में आ गए। तो ये बात जब जगन्नाथ मिश्र को पता पड़ी, बहुत दुखी हुए। बाद में ये निर्णय किया गया कि बड़ा बेटा स्कूल जाता था इसलिए उसने संन्यास ले लिया। स्कूल में सब जगह ऐसा दिखाया जाता होगा कि ये सब मिथ्या है, यहाँ ये भगवान की सेवा कर रही थी। आजकल कई बार देखा जाता है ना, भक्तों को भक्तों के बच्चे जब आते हैं मंदिर में तो पिताजी बैठे उसके पेरेंट्स होते हैं, अरे इसका ब्रेन वॉश कर देगा, ये कोई शादी वादी करेगा नहीं और शादी बन जाएगा, तो ऐसा डर था उनको। तो जगन्नाथ मिश्र कहा कि इसको अब निमाई का आज से स्कूल जाना बंद नहीं जाएगा। अरे साकी माता ने कहा कैसे पिता हुआ, बच्चे का स्कूल बंद कराते हो, ये तो ठीक नहीं है। जगन्नाथ मिश्र का नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगा, जो करना करेगा, जो खाना खाएगा मैं अपने साथ रखूँगा, लेकिन स्कूल नहीं जाएगा। मैं एक पुत्र को गंवा चुका हूँ, अब मैं दूसरे पुत्र को गंवाना नहीं चाहता, उसको जो मन है उसको करने के लिए स्कूल नहीं जाएगा, भाई को भी अच्छा लगेगा। भाई सोचने लगा ये क्या बात हुई, स्कूल जाने से क्या होगा। अब स्कूल नहीं जाने दिया तो निमाई बोला अब तो मैं और बदमाशी करूँगा। इतना बदमाशी करना शुरू कर दिया कि रात के समय पर केले के पत्ते सब कुछ चोरी करके आ जाता है। तो दूसरे दिन सुबह उसके वो घर पर देखते, अरे इतना अच्छा फूल था कहाँ चला गया। अभी क्या होता कि उस समय बाथरूम वगैरह थे वो घर के अंदर नहीं होते, घर के बाहर होते थे। पूर्व समय में ये बाथरूम वगैरह जो है वो शौचक्रिया आदि का जो जगह होता है वो दूर होता है, घर से दूर होता है, घर के भीतर कुछ नहीं होता। जैसे आप प्रसिद्ध अभी आजकल कैसा सिचुएशन, पहले सिचुएशन था कि लोग भोजन खाते थे घर पे और मल त्याग करते थे बाहर जा कर के, है ना। लेकिन आजकल क्या होता है उल्टा, है ना, लोग भोजन खाते हैं बाहर जा कर के, दुनिया भर का खाना कहीं से पता नहीं कौन सा कचरा उठा कर लेके आते और सारा कचरा इकट्ठा करके घर लेके आते और मल त्याग कर दे कहाँ पर, घर के भीतर। तो ये अशुचि माना जाता है, पवित्र चीज मानी जाती। तो ऐसा तो नहीं होता था पहले, तो दूर दूर जाना पड़ता था चल करके, खेत में जाते थे। और निमाय और उनके मित्र साथी वगैरह सब क्या करते थे, रात को सबके घर के दरवाजे बाहर से लॉक कर देते थे और जब दूसरे दिन सुबह लोग उठते थे और उनको बड़ा जोरों से प्रेशर आता था और खोलो किसने बंद कर दिया हमारा दरवाजा, किसने बंद कर दिया, खोलो दरवाजा खोलो। और ये देख कर निमाय को बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा आनंद रहा, लोग देखो कैसे परेशान हो रहे। तो ये सब देखने के बाद एक बार निमाय ने जगन्नाथ मिश्र को कहा कि कल है ना पिताजी, कल मेरे सपने में कौन आया था पता है। बोले कौन आया था, बोले मेरा बड़ा भाई विश्वरूप, वो सपने में आया था और आखिर मुझे क्या कहा, निमाय ये सब कुछ बेकार है, ये सब मिथ्या है, यहाँ पर रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, तुम संसार को त्याग करो, हरि की शरण में चले जाओ, भगवान का कीर्तन करो, गुणगान गाओ, ये शादी वादी के चक्कर में मत फंसना। तो मैंने तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि तुमने क्या कहा, तो मैंने कहा नहीं मैं क्या कहता, मैंने तो कहा जगन्नाथ मिश्र को कि अगर आप चले गए तो माता पिता जो है उनका संभाल कौन करेगा, उनका देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैं तो गृहस्थ जीवन स्वीकार करूँगा और मैं तो इनके साथ ही रहूँगा, मैं इनको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तो विश्वरूप ने कहा कि हाँ ये बात भी सही है, ठीक है तुम जगन्नाथ मेरे पिताजी और माता जी का पूरा ध्यान रखना, कभी उनको छोड़ के नहीं जाना। तो मैंने तो वचन दे दिया कि मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। तो जब ये बात जगन्नाथ मिश्र ने सुना, एक्चुअली वो बताना चाहते थे कि मुझे स्कूल जाने था, लेकिन जगन्नाथ मिश्र को विश्वास हो गया हाँ अब ये बेटा संन्यास नहीं लेगा, अब तो घर पे रहेगा हमेशा। लेकिन फिर भी उसको स्कूल जाने का शुरू नहीं करवाया था। तो वैसे जगन्नाथ मिश्र फिर उनको स्कूल जाने के लिए किस तरह से राजी होते हैं और निमाई किस तरह से अपने माता पिता को मनाते हैं स्कूल जाने के लिए और फिर कहीं से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और किस प्रकार का वो अपना वर्ताव करते हैं सब अपने मित्रों के साथ और उसके बाद उनका विवाह कैसे होता है वो सारी बातों की चर्चा हम कल करेंगे, जिसमें आदि लीला का जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो सब हम आपको बताएंगे। अभी तक तो हमने बाल्य लीलाओं के विषय में सुना था, लेकिन युवावस्था में उन्होंने कौन सी लीला की थी, किस तरह से उन्होंने कृष्ण प्रेम का दान करना शुरू किया था और किस तरह से उन्होंने जो महान प्रसिद्ध जो पापी लोग थे उनका उद्धार उन्होंने किया था, तो ये सब घटनाओं की चर्चा हम आगे करेंगे कल से। सो चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीलाएँ हैं उसमें बहुत ही तत्व संदेश छिपा हुआ है, जिसमें आपने बार बार देखा कि भगवान जब प्रकट होते हैं बाल्य रूप में फिर भी वो भगवान ही रहते हैं और ऐसे कार्य भी करते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते। तो निमाय पंडित के रूप में उन्होंने बहुत लीलाएं प्रस्तुत की बाल्यकाल में और आगे की लीला हम आपके साथ कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
आज के आनंद के लिए हम लोगों को जो आनंद मिला उसके लिए हम प्रभु जी के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल एक बार और बोलेंगे और फिर एक बार और बोलेंगे हरि बोल।